ज्ञान का पहला पहला लेसन क्या है? देह को त्याग करके अपने आप को आत्मा समझो, अर्थात बेहद में रहो। अपने आप को देह का जो हद, देह के पदार्थ का जो हद होता है उसे बाहर निकालो। और ज्ञान का लास्ट पेपर यही है, बेहद में रहना। फिर बीच में बहुत सारी बातें आती है, हम एक हद को छोड़ के थोड़ी सी मुक्ति प्राप्त करके दूसरा एक सूक्ष्म और जंजीर आ जाती है, फिर उसको रियलाइज करके उसको छोड़ करके तीसरा, क्योंकि हमने बहुत समय से देह का सपोर्ट लिया है, देह के आधार चले हैं, देह के कंफर्ट के आधार से चले हैं। और ये देह का जो सपोर्ट है, चलो बाबा आता है संगम युग में और बाबा हमको शुरू शुरू में इतना पावर और प्यार भी देता है, तो वो पहचान जागृत होती है, अरे कोई आया है। लेकिन उस पहचान में रहने के लिए ताकत चाहिए, क्योंकि हमारी सारी सिस्टम बनी है देह के सपोर्ट के आधार से, ना कि परमात्मा के सपोर्ट के आधार से। तो फिर जब भी हम परमात्मा के डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, धारणाओं में रहते हैं, तो वो फिर एक अलग सपोर्ट सिस्टम बन जाती है अंदर की। वो संस्कार बनते हैं सपोर्ट के, स्पिरिचुअल सपोर्ट के। फिर जब वो सपोर्ट सिस्टम होता है, तभी आप बेहद में रह सकते हैं। संस्कार के बिना तो रह नहीं सकते हैं। तो मैं सोच रही थी, और ये बाबा की वाणी से भी संबंधित बात है, कि संगम युग में सबसे सूक्ष्म बंधन कौन सा होता है? क्या देखा बांधो मोटा रूप है मन, किस बात में? और ये समझो एक सोने की जंजीर है, ये श्रेष्ठ कर्मों का भी बंधन होता है। नहीं, आप देखो भक्ति मार्ग में हम सोचते थे भावना में आकर के हम अच्छा कर्म करें किसके लिए, कुछ अच्छी सेवा करें, पर सेवा कर लिया, इस तरफ पाप भी बढ़ा, इस तरफ सेवा भी कर लिया, वो तो भक्ति मार्ग में भी चलता था। ज्ञान मार्ग में भी श्रेष्ठ कर्मों का फल जमा होता है, हम अक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन कभी कभी उसको भी, उससे भी पार जाके बेहद में रहना, ताकि श्रेष्ठ कर्मों का हमको अट्रैक्शन ना हो, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि हम क्या कभी कभी करते हैं, कॉम्पेंसेशन कर लेते हैं, योग नहीं लगता है चलो श्रेष्ठ कर्म कर ले वे, या चाहे आप निमित्त बने हो देश का या सेंटर का, तो उस समय इतना सारा श्रेष्ठ कर्म जमा किया, बस इनफ किया, अच्छा किया, बस जैसे श्रेष्ठ कर्मों के पद पे हम बैठ गए, उसकी भी फीलिंग होती है। लेकिन उसको मुक्ति नहीं कहेंगे, उसको बेहद नहीं कहेंगे। बेहद माना कुछ भी हद की बातों में कुछ सपोर्ट नहीं लेना है, सिवाय एक बाप दूसरा न कोई। मधुबन माना ये, मधुबन एक बहुत पावरफुल आईना है, जिसमें आप चाहे अपने आप को देखना चाहते हो गहराई से, तो आपको सूक्ष्म में वो हद की पहचान आएंगी आपको। और थोड़ा सा भी हद का सपोर्ट लिया, माना खुद की अंदर की फीलिंग को, जो उड़ती कला की स्टेज होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट फ्री, वो डल हो जाती है थोड़ी। और हम कई समय के लिए उस डलनेस में हम चलते हैं। चलो संगठन में बैठे, थोड़ा योग करता है, वातावरण अच्छा है, खुशबू आ रही है, लेकिन अंदर फ्रीडम है। तो खुद को बहुत ऑनेस्टी से चैलेंज करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ कर्म, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। स्पोर्ट्स में आपको पता है ना, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट है जिसमें वो एक लकड़ी लेकर के वो दौड़ते हैं और फिर उसको लकड़ी के आधार से वो हाई जंप करके बार के ऊपर पार करते हैं। लेकिन लकड़ी के साथ दौड़ना माना एक मोमेंटम पिकअप, स्पीड पिकअप हो जाना, उसकी तीव्रता होनी चाहिए अपनी दौड़ाई में, और फिर लकड़ी का आधार है कि मुझे हाइट मिले। लेकिन दूसरे पार को दौड़ना है तो लकड़ी को तो छोड़ना पड़ेगा ना, लकड़ी के सहित तो नहीं जा सकते हैं ना। तो हमारे श्रेष्ठ कर्म भी लकड़ी माफिक होते हैं, हमको मोमेंटम देते हैं, उमंग उत्साह भी देता है, हमको ऊंचा ले जाता है, लेकिन एक दफा आता है जो हमको वो लकड़ी भी छोड़ना होता है। और वो लकड़ी के साथ जो भी बातें आती है, पोजीशन, नाम, शान, बस मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ मिला, मैंने कुछ प्राप्ति की, मैंने मेरे कर्मों से मैंने कुछ लिया, वो भी सूक्ष्म बंधन बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि आत्मा बिल्कुल फ्री है, परमात्मा बिल्कुल फ्री है। तो मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि जब हम योग करते हैं, भट्टी में बैठते हैं, तो भट्टी का तो यही एम होता है कि खुद को खुद में परिवर्तन लाना है ना। ऐसे भट्टी करके फिर ऐसे ही वैसे थे तो भट्टी का तो कोई फायदा नहीं, फिर ऐसा ही संस्कार बनता है, अधूरा योग का संस्कार बन जाता है और आपकी गाड़ी उसी स्पीड से ही चलेंगी। इसलिए सोच समझ करके भट्टी में बैठना चाहिए क्योंकि खुद को चैलेंज करना है। अभी कौन से हद, कौन सी हद की बातें में अभी मैं घूम रही हूं जिससे मुझे अपने को छुटकारा देना है। और आप ये अंदर से खोज करेंगे ना, बाबा भी आपको महसूसता की शक्ति देंगे इस बात में। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आखिर इस समय में हमको फ्लाइंग स्टेज में जाना है। और मैं कहती हूं कि श्रेष्ठ कर्म से ऊपर हमारी श्रेष्ठ स्थिति है। जो हम समझते हैं सिक्योरिटी है, हमको सेवा का रोल मिला, वो सिक्योरिटी मानते हैं लोग, हमको सेवा स्थान मिला, वो भी एक सिक्योरिटी होती है, हमको कुछ किसी ने अटेंशन दिया, वो भी सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन आपकी जो आदि सिक्योरिटी है अंदर की, वो है आपकी आदि अनादि स्थिति, विश्व कल्याणकारी आत्मा, एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, ये सीट ही आपकी सिक्योरिटी है। फिर आप कहां पे भी दुनिया में जाओ, आप सेवा लायक, सेवा आपके पीछे पीछे घूमेंगी। आपको ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा मैं सेवा कहां से लाऊं कौन मुझे पूछेगा, मुझे ये पोजीशन मिले तो सेवा। स्मृति से शक्ति भरते हैं, शक्ति के वो शक्ति के आधार से सेवा आती है। तो डीप रीति से अपने आप को अंदर से चेक करना है कि मेरी सिक्योरिटी मुझे कहां से अभी तक महसूस हो रही है, मैं अभी कौन सा सूक्ष्म में सपोर्ट लेके अभी भी चल रही हूं जिससे मुझे थोड़ा सा भी कंफर्ट या पावर मिल रही है और इसके आधार से मैं चल रही हूं। क्योंकि इसका भी अकाउंट होता है। तो अंदर से बाबा को एक बाप दूसरा न कोई बनाना है, माना एक से ही मुझे शक्ति, ताकत, स्नेह, प्रेरणा और बल मिलनी चाहिए। पांच बातें, हमको बाबा की याद से ये पांच बातें मिलती हैं। बाबा की याद, इस याद में इतनी रिचनेस भरी हुई है। एक तो ईश्वरीय स्नेह, अब देखो वो पिता के संबंध में जो बच्चा को स्नेह मिलता है, वो सर्व संबंधों का फाउंडेशन वो ही है, वो स्नेह है। आपने पिता का ईश्वरीय पिता का स्नेह प्राप्त कर लिया, माना सर्व संबंध का स्नेह प्राप्त कर लिया। एक बहुत ही मीठी स्नेह है, जो जिस स्नेह में आत्मा बिल्कुल निश्चिंत बन जाती है, एक सेफ्टी महसूस करती है। बाबा बैठा है ना, बाबा की बैठने की खुशबू आती है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब भी समझो एक इतना बड़े कमरे में, माँ यहां सोफे पे बैठी है, बच्चे सारा कमरे में घूमेगा खेलेगा, लेकिन जिस घड़ी माँ उठ करके वो दरवाजे के बाहर चली जाएंगी, तो बच्चा क्या करेगा, दरवाजे पे खटखटाएगा। भल आप जितना भी इसको खिलौना दो, उसकी माँ कमरे से बाहर गई, उसको वो फीलिंग आई। तो हम क्यों अपने मन मंदिर में बाबा को सदा के लिए बिठा न दो। जब तक हमको अंदर से वो फीलिंग ना आवे कि बाबा बैठा है, तब तक सूक्ष्म में वो जैसे छोटे बच्चे की बेचैनी होती है। फिर हम और बातों में भागते हैं, चलो इससे मुझे फायदा मिलेगा, इस कर्म करेंगी फायदा मिलेगा, इसके साथ जाएंगी इसके अंदर रहेंगी इसका फायदा मिलेगा, ऐसे ऐसे से साधारण सपोर्ट लेंगे। थोड़ी गहरी बात है, क्योंकि फीलिंग की बात है, आप फीलिंग को तो धोखा नहीं दे सकते, जैसी आपकी फीलिंग वैसी है। और हम तो फीलिंग के आधार से ही चलते हैं ना, जिससे आपको अच्छी फीलिंग आती है उस डायरेक्शन में आप भागते हो, जहां से आपको प्राप्ति मिलती है वहां ही भागते हो आप। नेचुरल है, ये कुदरत है। तो एक है कि हमारी भावनाओं में बहुत ही ईश्वरीय स्नेह भरी भावनाएं होनी चाहिए। ये मेहनत का काम है, क्योंकि भावना ऐसी चीज है कि बहुत ज्यादा एक्शन में आकर के करप्ट हो सकती है। भावनाओं को साफ रखना, भावना को श्रेष्ठ रखना बड़ी बात है, उसके लिए बहुत ज्ञान चाहिए। क्या है, हम कभी कभी प्यार का रूप हो जाता है, तो वो जब पहले प्यार का रूप होता है तो बाद में हमारे पुरुषार्थ ही जीवन में विघ्न डालता है। ज्ञान का रूप है फिर प्यार का रूप है। ज्ञान सहित प्यार रहेगा तो वो बेहद की सेवा लायक का प्यार है, एक्यूरेट प्यार है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। एक बारी क्या हुआ, हम दादी जी के साथ ऑक्सफोर्ड में थे, और उस समय हमने एक भाई के साथ, जो उस समय बीके भाई था, अभी तो नहीं है, ब्रायन बेकन करके, पूरा एसएमएल का कोर्स कराया था। तो सारे यूरोप के जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज है, 35-40 जितना का प्राइवेट रिट्रीट की थी ऑक्सफोर्ड में, जिसमें ब्रायन और दादी दोनों रिट्रीट के मेन रिसोर्सेज थे। तो एक शाम का टाइम था, तो दादी जी पूरा समय के लिए हाजिर थी, बीच बीच में योग का अभ्यास कराया था, सभी को बहुत अच्छा लगा कि स्पिरिचुअल लीडर के हिसाब से हमारे साथ रह रही है। तो एक शाम का समय था जिसमें इन दोनों का इंटरव्यू होना था, ब्रायन और दादी का, और वो हमारा लंदन का भाई नेविल भाई वो इंटरव्यू ले रहा था दादी से और ब्रायन भाई से। तो नेविल भाई ने, हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो नेविल भाई ने ये प्रश्न पूछा दादी को कि दादी आप हमको बताओ कि ये ब्रायन की स्पेशलिटी क्या है, आप इसको 25 साल से ऊपर जानते हो, उसकी विशेषता क्या है। प्रश्न तो सिंपल है, तो दादी ने थोड़ा गोलमोल जवाब, आप देख रहे हो अपना काम कर रहा है, सेशंस ले रहा है, जो इसने ईश्वर से लिया है वो आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे करके। दो मिनट के बाद नेविल भाई कहता है फिर दादी को, दादी आप सिर्फ प्रश्न का सीधा जवाब दे दो कि ब्रायन भाई की ये विशेषता है, ठीक है। तो दादी ने बोला ना, दादी क्यों बीच में इंटरफियर करे, ड्रामा अनुसार वो अपना पाठ बजा रहा है और आपको प्राप्ति मिल रही है जो इसने लिया है। क्योंकि आज दादी जी बीच में इंटरफियर करेंगी और ब्रायन की स्पेशलिटी का वर्णन करेंगी तो कल उसको परमिशन मिलेगा दादी को अपनी कमजोरी बताने की, और दादी को ऐसे संबंधों के खेल में नहीं जाना है। प्योर लव समझा? ये है ज्ञान युक्त प्यार। जिस आधार से जैसा ड्रामा चलता है, जो नेचुरल चीज होती है, हम बीच में अपना एडिशन क्यों करें? बस भावना में आकर के अपना एडिशन कर लो, यही हमारे लिए एक विघन बन जाता है आगे के लिए, हमको कई सूक्ष्म बातों में फंसा लेता है। ये थोड़ी गहरी बात है लेकिन बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड कि हमको खुद को चलाना है ज्ञान के आधार से, ड्रामा अनुसार, बाबा की श्रीमत के आधार से, ना कि अपनी इमोशनल भावना के आधार से। वो तो हम बहुत समय से भक्ति मार्ग में चलते आए ऐसे, उससे तो फायदा ही नहीं हुआ और ही दुर्गति हुई और ही हमारे सामने विघ्न आए। तो ये पहली बात है कि भावना को शुद्ध रखनी है स्नेह द्वारा। दूसरी बात है विश्वास की बात। मैं टोटल आपको चार स्टेप्स, संपूर्ण फेथ, और मैं इंग्लिश में ये शब्द यूज करूंगी, फेथ क्या है, क्योंकि फेथ ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे हाथ में। फेथ ना है तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ सकती। लेकिन हिंदी में इसके बहुत सारे अलग विंडोज है, शब्द है। एक प्रकार की फेथ है भावना, दूसरा है विश्वास। विश्वास को हम कहेंगे ट्रस्ट। ट्रस्ट माना आपने सर्व संबंध, आपने अपनी डोरी भगवान के हाथ में दे दी, जैसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे, मैं रेडी हूं, जहां बिठाएंगे जो भी खिलाएंगे मैं रेडी हूं, या थोड़ी बहुत कंडीशंस है, हां बाबा मैं सेवा करना चाहती हूं लेकिन इस कंडीशन के अंदर। तो विश्वास माना पूर्णा ट्रस्ट बाबा में। कभी छोटा बच्चा, इफ यू इंटरेस्टिंग देखा जाए तो छोटा बच्चा भी, बेबी पूरा विश्वास के आधार से चलता है ना। उसको पता है उसके मां बाप उसको प्यार करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, और जो मां बाप कहते हैं उस पर ही चलता है। अपना तो नहीं सोचता है कि मेरा आगे का भला क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा कौन देखभाल करेगा। विश्वास मानिए, इसको हम ब्लाइंड फेथ नहीं कहेंगे लेकिन उसकी पहचान है जिसने हमको गारंटी दी है कि आप मेरे डायरेक्शन पे फॉलो करेंगे तो मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं ही। इसमें एक दो दिन पहले मैं एक दूसरा उदाहरण देती हूं आपको, विदेश की बात है। कई छोटे छोटे सेंटर्स को अभी थोड़ा पैसे का मामला है, लॉकडाउन हुआ है, भंडारा में आता नहीं है, तो छोटी छोटी सेंटर्स की जो बहनें हैं, एक दो ऐसी जगह है जो एक दो बहनें मुंज गई है, ऐसी जगह है कि एक दो बहनें बड़ी सेंटर में आ गई है। तो वैसे तो यज्ञ का डायरेक्शन तो फिलहाल है, आप मैनेज नहीं कर पाते तो बड़े सेंटर में आ जाओ। भारत में तो ऐसे ही हो रहा है कई एक दो जगह पे, विदेश में इतना इजी नहीं है। लेकिन हमने एक सिचुएशन में देखा है कि जिस बहन ने अपने थोड़ा उसके बड़े के साथ संबंध ठीक नहीं रहा, और थोड़ा अपना वो भी था कि मुझे अपना सेंटर चाहिए, अपनी एरिया चाहिए, वो तो उस आधार से वो छुट्टी बड़े सेंटर से, उसका सेंटर बना दिया, वो सब कुछ कर लिया। अभी इसको बॉक्स में कुछ नहीं आ रहा है, अभी इसको अंदर से बहुत डर हो रहा है, मेरा क्या होगा, मेरी फ्यूचर क्या है। क्यों? क्योंकि पहले से किस कारण से उसने सेंटर अपना बनाया वो यथार्थ नहीं था। जो ट्रस्टी होकर के जाता है सेवा पे, इस समय पे उसका डर नहीं होगा, क्लियर है। ये सिचुएशन है सेंटर की, बड़ों को बता दो, बड़ों के डायरेक्शन के चलो, और जो बड़ों के साथ संबंध अच्छा है तो वो आप ही आपको बुला लेंगे सेफ्टी में, आपको अपना भी नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप ऐसे सिचुएशन में पहुंचे हो जो आप बिल्कुल अपना सोच के, अपने सोच में डर के बैठे हो, माना कुछ दाल में काला है, आपने कई ऐसा डिसीजन लिया होगा जो यथार्थ नहीं था, जो शायद अभिमानवश मोहवश लिया हुआ होगा, इसीलिए अभी आप ऐसे समय पे पहुंचे हो जो आप अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हो। ये कर्मों की फिलॉसफी है। ये अभी भी फिर चांस है, फिलहाल अभी आप नम्र होकर के डायरेक्शन ले सकते हो, लेकिन अभी ताकत चाहिए उस डायरेक्शन में फॉलो करने का। और विश्वास के साथ निश्चय बुद्धि, विश्वास केवल ये बाप मेरे जीवन में आया है, मेरा सर्व संबंध है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डायरेक्शन से फॉलो करके विश्वास बैठता है। लेकिन निश्चय बुद्धि जो है वो बिल्कुल जब ड्रामा के पट्टे पे बुद्धि चलती है तभी निश्चय अटूट रहता है, अचल अडोल बुद्धि का पांव बनता है कोई भी बात हो जाए, क्योंकि निश्चय बुद्धि हमको साक्षी बना देता है। आखिर हम फिल्म में बैठे हैं ना, मुझे याद है एक मुरली में बाबा ने बताया था कि देखो बाप भी बच्चों को बताता है कि ये मंजिल, मकान का मंजिल, ये मकान अभी 10 मिनट में गिरेगा और 10 मिनट के बाद गिरता नहीं तो आपको संशय उठेगा। वो तो भगवान तो सत्य है, सत्यता में विश्वास करके बोला, ठीक है भगवान ने बोला फिर भी नहीं गिरा, तो वही विश्वास में आपने संशय उठाया। लेकिन उसको तो वो राज पता है, वो राज मर्ज करके बच्चों की रेख देख करने के लिए राज को खोला। एक बारी दीदी ने भी, एक मुझे याद है एक स्टोरी, पता नहीं किसने बताई थी, लेकिन बाबा ने पूछा कि अभी अच्छा ये माउंटेन से कौन जंप लगाएगा, तो कोई ने हाथ नहीं ऊंचा किया, दीदी ने हाथ ऊंचा किया, पास हो गई। क्यों? क्योंकि दीदी कहती है मेरा पूरा विश्वास है कि बाप कभी अपने बच्चों को ऐसे डायरेक्शन नहीं देगा। माना वो सारी अंदर की राजे मर्ज करके बाबा अपना पाठ बजा रहा है, और जो ड्रामा में है वो ही नूंद होगा, तो संशय उठाने की बात क्या है संबंध में। और देखो हम साक्षी होकर के सब कुछ देखेंगे ना, कभी भी उस बात से हम दुख भी नहीं लेंगे। समझो कोई व्यक्ति ने रॉन्ग डायरेक्शन भी दिया होगा, वो भी ड्रामा में नूंद है, अपना पार्ट बजा रहा है, लेकिन उस समय हम साक्षी होते हैं तभी हम उस समय भी हम हमारा पार्ट भी बजा सकते हैं, हम रिएक्शन में नहीं आएंगे। कंफ्यूजन क्या होता है हमारे लिए, जब ही हम रिएक्शन में आते हैं, जो ड्रामा के जो सीन्स होते हैं हमारे आसपास उसके ऊपर हम जजमेंट डालते हैं, क्रिटिसिज्म डालते हैं, माना पूर्ण रीति से जो ड्रामा है, जैसा ड्रामा है उसकी पहचान नहीं है, सारा मदार पहचान के ऊपर है। तो निश्चय बुद्धि में ये फिट हो गया है कि मैं न केवल एक आत्मा हूं, लेकिन मैं इस विराट ड्रामा एक बेहद की एक्टर हूं, ये एक विराट फिल्म है। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है, मेरा पार्ट क्या है। और फिर उसके बाद जो चौथा लेवल है कॉन्फिडेंस, जिसके आधार से हमारे कर्म में जो कॉन्फिडेंस होता है, माना अभिमान वाला कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन ऐसा एक फर्मनेस कहेंगे, स्टेबिलिटी हमारे एक्शंस में, और वो ही एक्शंस औरों का उद्धार करने के लिए लायक बन जाएगा। क्योंकि जो हम विश्वास से निश्चय से कर्म लेते हैं, वो ही औरों का भाग्य खुलता है उससे। तो इसमें हमको बाबा से स्नेह न केवल लेना है, शक्ति भी लेनी है, इसकी भी चेकिंग होनी चाहिए। मेरे में कितनी शक्तियों की महसूसता हुई है, सहन शक्ति की कमी है, धैर्यता की शक्ति की कमी है, मर्ज करने की शक्ति है, समाने की है, कभी कभी पेट थोड़ा कमजोर हो जाता है, बहुत सहन कर लिया है ऐसे कभी फीलिंग आती है ना, ये हद में आ गए। तो शक्ति को जमा करना है, बाबा से लेना है शक्ति, और वो गिफ्ट हमको मिलती है जब हम साफ दिल होकर के बाबा को हमारी कमजोरियों बताते हैं, तभी हमको रिटर्न में बाबा शक्ति देता है उसको पार करने के लिए। और फिर बल भी मिलता है, शरीर को कितनी ताकत मिलती है। नहीं, हमने दादी में बहुत देखा है, दादी जी ऐसे ऐसे समय पे थी, इतना शरीर कर पे होता था, फिर भी रातों रात बहुत चिल्लाती थी, ऐसे इतना दर्द होता था, फिर नेक्स्ट डे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बादाम देती थी। बाबा की याद में ऐसा है कि बाबा की याद आपकी शरीर को भी चला सकता है, आपको दर्द से दूर कर सकता है, इसमें इतनी शक्ति है। और फिर सकाश भी मिलती है। नहीं, सकाश क्या होता है, वो करंट इन एडवांस, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए इन एडवांस बाबा सकाश देता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, अमृत वेले के समय इतना सकाश मिलता है, फिर दिन भर में एक टेस्ट पेपर सामने आता है, फिर पता चलता है क्यों एडवांस में सकाश मिला। एक बारी क्या थी, ऑक्सफोर्ड में 120 जितने भाई बहने आए थे हॉलैंड से, तो उन्होंने 4 दिन का रिट्रीट किया, तो उनको जाना था, फिर उसी समय 9 बजे 2 बस की थी हमने एयरपोर्ट उनको भेजने के लिए। तो अमृत वेले के बाद 6 बजे आने वाली थी वो बसेस, 9 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना था, तो 6 बजे आए, कोई बस नहीं आई थी, तो हम तो रिसेप्शन सारे सभी सामान लेकर के बाहर खड़े थे 120 लोग, कोई बस नहीं आई, बस नहीं आई, फिर फोन किया तो उसकी मिस्टेक थी, उसने दूसरे दिन पे सोचा था बस ले आना था, तो उस दिन पे बसेस भी नहीं थी, तो फिर क्या किया जाए, तो फटाफट 4-4 के ग्रुप बना करके टैक्सी करके भेज दिया एयरपोर्ट पे, क्योंकि 120 लोग हैं। तो फिर मुझे पता चला उस दिन अमृत वेला मेरा क्यों इतना पावरफुल था, क्योंकि मुझे इतनी सकाश मिल रही थी बाबा से अमृत वेले के समय में। मैंने सोचा बाबा थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है फिर 5 बजे पता चला क्यों तो सकाश हमको इन एडवांस मिलेंगी, ये गारंटी है, लेकिन सकाश को खींचने के लिए हिम्मत चाहिए अंदर से। एक ऐसे निराश होकर के हो जाएंगे तो सकाश भी नहीं मिलेंगी उस समय। ये जो सूक्ष्म में वृत्तियां जो है ना हमारी, निराश होने की वृत्ति, कंप्लेंट करने की वृत्ति, बस उदास बन होने की वृत्ति, ये सारी आदतें हैं अंदर की, वो हमको बाबा से शक्ति बल ताकत या सकाश खींचने नहीं देती है। इन वृत्तियों का त्याग करना ही है कैसे भी करके। जब भी आप अंदर में उदास की फीलिंग, जल्दी इसको भगा दो, उसमें आप डूब नहीं जाओ, उसमें स्विमिंग नहीं करो, उसमें स्विमिंग करके जाते फिर अपनी खुद फंस जाते हैं, फिर बाद में क्या ज्ञान है, ज्ञान ओम शांति हो जाता है, फिर और 10 क्लासेस सुनो, फिर जाके स्थिति ठीक होती है। ज्ञान बाहर से नहीं मिलता है, हम ज्ञानी तो आत्मा है, हमारा निज स्वरूप है मास्टर ज्ञान साकर। लेकिन वो ज्ञान क्यों नहीं काम करता है? वृत्ति बदल गई अंदर बीच में। और फिर लास्ट में प्रेरणा, प्रेरणाएं बहुत मिलती है बाबा से, ये कर ये कर ये कर। अभी बाबा का कार्य इतना बेहद का कार्य है, कई लोग कभी कल परसों साउथ अफ्रीका से कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें एक भाई ने पूछा अभी अंत समय में क्या करना चाहिए, बस बैठ करके सेवा को छोड़ करके योग करना चाहिए? मैंने बोला आप सेवा को छोड़ करके योग का प्रयत्न भी करेंगे फिर भी योग नहीं होगा आपका, क्योंकि अभी का समय इतना अमूल्यवान है कि आप जो भी बनना चाहते हो बन सकते हो, और इतना कमाई करने की बात है, स्थिति से काम लेना है और अवेलेबल रहना है बाबा को, मेंटली अवेलेबल रहना, इंटेलेक्चुअली अवेलेबल रहना है, फिजिकली अवेलेबल रहना है। बाबा आपको जो कराना है करो, लेकिन स्थिति में रेडी रहना है। तो फिर बहुत प्रकार से श्वास संकल्प समय सफल होगा, इतना सफल होगा कि थोड़े समय में आप इतनी कमाई करेंगे कि आपको पूरा कल्प के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो अभी का समय है एवर रेडी रहने का, ऐसे नहीं सोचना है बस मुझे इसको छोड़ना है और ऐसे बैठना है, ये भी सोच गलत है। पता है एक बारी दादी गुलजार के साथ मोहिनी बहन, हाँ जब भी मोहिनी बहन ने शरीर छोड़ा था तभी हम ग्रीस में थे, तो हम उस समय आए थे अंतिम संस्कार के लिए, और वापसी जाके समय अहमदाबाद में रुके, क्योंकि उसी समय दादी जी को एक दो वीक पहले हॉस्पिटल में दाखिल किया था, लंग्स में पानी का प्रॉब्लम शुरुआत हो गया था। तो जब भी हम अहमदाबाद पहुंचे तो हम दादी को मिले, तो हमने दादी को पूछा कि दादी बाबा अभी क्या कर रहा है आपके साथ, आपको इतना कष्ट हो रहा है, लंग्स में पानी भर रहा है, तो क्या कर रहा है बाबा आपके साथ? दादी ने बताया कि बाबा तो आता है। तो मैंने पूछा किस रूप में आता है, मैंने सोचा शायद दादी बोलेंगी माँ के रूप में या दिलाराम के रूप में प्यार देंगा, कैसी हालत में तो कंफर्ट चाहिए ना। तो दादी ने जवाब क्या दिया, कहते हाँ बाबा चेकर के रूप में आता है। मैंने बोला चेकर के रूप में आता है, क्या करता है, तबीयत को चेक करता है? कहते हाँ वो भी देखता है, लेकिन खास ये चेक करता है, मेरा ध्यान चेक करता है। अभी आप सोचो इतनी बड़ी दादी, इतनी महान तपस्वी आत्मा, और इस हालत में बाबा आता है बच्ची का ध्यान चेक करने के लिए। तो हमारा यही काम है ना, बाबा है ना थोड़ा सेल्फिश है, उसको टोटल कंप्लीट अटेंशन चाहिए, इधर उधर देखना नहीं है। दादी हमको काफी डांटती थी, जब भी हम क्लास में बैठते थे इधर उधर देखती थी, डांटते थे इधर उधर क्यों देखते हो। बाबा भी ऐसा है, थोड़ा सा भी इधर उधर देखा रूठ जाता है जल्दी। तो ये ऐसा संबंध है और मंजिल ऐसी ऊंची है कि बाबा 110% ध्यान चाहता है हमारा, कुछ भी हो जाए। तो ध्यान की जब बात आती है, माना अटेंशन, ट्रांस की बात नहीं है, अटेंशन की बात है, तो अटेंशन तो आप कहीं भी जगह पे रख सकते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हुए भी आप ध्यान में, बाबा के ध्यान में रह सकते हैं, ऐसे नहीं कर्म को छोड़ करके योग में बैठना है। ध्यान ऐसी फैकल्टी है, अटेंशन ऐसी फैकल्टी है, आप कर्म करते हुए भी एक संकल्प में रह सकते हैं, उससे श्रेष्ठ कर्म बनता है, और जैसे वो कर्म खत्म भूल जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये समय है 110% ध्यान देने का समय। बहुत ही कमाई हो सकती है पदम पदम पर। और बाकी मैं ये लास्ट में तो ये डेफिनेटली मैं प्रश्न ये पूछूंगी आप सभी को कि इन दिनों में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है आपकी पहचान में भगवान के प्रति आपकी पहचान कैसे और गहरी हुई है भगवान के प्रति? आपने क्या भगवान में कौन सी ऐसी बात पहचानी है जिस आधार से आपका संबंध और ही गहरा बना है बाबा के साथ? जी आपने क्या महसूस किया है, क्या पहचान किया है, बोलो। तो माना आपका शाम का योग और ही अच्छा होने लगा। सेवा का थॉट। और इसका बाबा के साथ संबंध में क्या फायदा हुआ है? माना आपके ध्यान से, पुरुषार्थ से आपका शाम का योग और पावरफुल बना और उससे आपको और ही जैसे बाबा की नजदीकपन की महसूसता हुई। देखो एक है मन में, मन में दो प्रकार की वाइब्रेशंस की ट्रांसलेशन होती है। एक है किसी को एक नजारा दिखाई देता है, विजन दिखाई देता है, ये वाइब्रेशंस एक इमेज बना देती है मन में। दूसरी होती है फीलिंग, कोई फील करते हैं और गहराई में। बाबा को पहचानना है ये बड़ी बात है, एक बहुत महान हस्ती है। ना केवल इसका रूप को कि वो परमात्मा है, एक ज्योति बिंदु है, वो तो बहुत सहज है, बुद्धि का काम है, लेकिन बाबा की अंदर जाना, उनकी क्वालिटीज को महसूस करना। मुझे ऐसा लगा इस समय में जब भी मैंने खुद को ये प्रश्न पूछा, मुझे और ही गहरा रीति से ये मुझे बाबा से मिला कि बाबा का रहम दिल का रूप, दयालु का रूप इतना बेहद का है कि अभी भी वो रूप ले रहा है। अभी धर्मराज का रूप नहीं है बाबा का। अभी मैं जो हूं, मैं जैसी हूं, बाबा मुझे इस हालत में स्वीकार करके मेरे ऊपर काम कर रहा है, मुझे नरम बना रहा है, मुझे सॉफ्ट बना रहा है, सारा दुख मिट रहा है, मुझे और श्रेष्ठ इतना पुरुषार्थ कर रहा है मेरे पर। मुझे कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बाबा सॉरी मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूं, आप मेरे ऊपर इतना मेहनत कर रहे हो, लेकिन इतना रहम दिल दयालु बाबा है कि कभी वो बच्चों के ऊपर पुरुषार्थ रुकेगा नहीं। कई ना कई तरीके से वो कोई रास्ता निकालेगा आपके लिए। मैंने इतने ऐसे एग्जांपल्स देखे और मेरे अंदर में इतना प्यार कि ये बेहद का बाबा ऐसा बनना है बड़ी बात है। नहीं, हम तो छोटी छोटी बातों में संबंध में गिव अप कर देते हैं, बस किसी ने मेरी बात नहीं सुनी उसको छोड़ दो। दादी कभी भी किसी को छोड़ती नहीं थी, भले वो ऊपर से सुने ही नहीं, अंदर से दिल विशेष गुड विशेष को देकर उसको मारती जरूर थी। तो ये हमारा काम है, बाप समान बनना है तो बेहद में जाना है, दिल बुद्धि मन को बेहद में लेके जाना है। तो ये सब पहचान के ऊपर आधारित है, भगवान को कितना पहचाना है मैंने। क्योंकि लास्ट में तो यही खेल तो इसके ऊपर ही है ना, पहचान से ही सब कुछ शुरू होता है। फिर पढ़ाई हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ाई को धारण करते हैं उसकी प्राप्ति होती है, हमको क्लैरिटी मिलती है, गुण आते हैं, प्राप्ति से फिर हमारी पुरुषार्थ की गाड़ी बढ़ती है आगे, पुरुषार्थ का रास्ता क्लियर बन जाता है और पुरुषार्थ के आधार से पद मिलता है। दादी हमको कायम कहती थी, पद का ख्याल है आपको? कभी कभी तो हम पुरुषार्थी जीवन में इतना फंस जाते हैं कि हम इतना भी नहीं सोचते पद क्यों पुरुषार्थ कर रहे। अभी की पुरुषार्थ की जो क्वालिटी है, आप थोड़ा इसको एनालाइज करेंगे तो आपको अभी के समय अनुसार आपका पद का आपको रियलाइजेशन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तो इन दिनों में हमको ऐसा बनना है, ऐसा रहना है कि सचमुच जैसे बाबा का प्यार, शक्ति, साकाश का फुहारा, एक घड़ी वेस्ट नहीं होनी चाहिए जिसमें हमको बाबा से अनुभव न मिले। ऐसे साधारण रूप में अभी नहीं चलाना है हमको। और लास्ट में तो यही है कि हमारा पूरा ब्राह्मण जीवन का ये फाउंडेशन है जो बाबा इतने सालों से ज्ञान लेकर के, प्रेरणाओं देकर के हमारा स्वमान का फाउंडेशन बना रहा है। बच्चे ये करो, ये संस्कार अच्छे बनेंगे, आपका सम्मान का फाउंडेशन और मजबूत बनेगा, क्योंकि आखिर बाबा भी एक मददगार है हमको अपने संपन्न संपूर्ण स्थिति तक पहुंचाने के लिए। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो ना, और बिल्डिंग के आसपास वो स्कैफोल्डिंग होता है, सपोर्ट होता है, लेकिन जब बिल्डिंग तैयार होता है तो वो स्कैफोल्डिंग सपोर्ट तो बीम बीम तो रहता नहीं है, उसको तो निकालते हैं ना, फिर बिल्डिंग की ऐसे शानदार बिल्डिंग दिखाई देता है। तो वैसे ही इतने सालों से बाबा ने इतनी पढ़ाई, पालना, प्राप्ति दी है पूरा सोमान का, हमारा घर का फाउंडेशन बनाने के लिए। और ऐसा समय भी आता है जो वो पूरा सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे निकलता है। अभी बाबा देखो साक्षी होकर के धीरे धीरे, क्योंकि बाबा का पूरा विश्वास है कि ये घर मैंने तो अच्छा बनाया है। बाबा का तो विश्वास है हमारे ऊपर, हमारी वो तो निश्चिंत है कि बच्ची का संपूर्ण संपूर्ण अवस्था तो है, लेकिन खुद बच्ची का विश्वास कितना है इसमें। अभी मैं अकेली मेरे सोमान के घर पे, सोमान के फाउंडेशन पे रह सकती हूं, या अभी भी मुझे कोई सपोर्ट चाहिए? पेपर इसमें आएगा। तो ये सारी बातें बेहद में लेके जाने की बातें, अपने दिल मन को वृत्ति को चैलेंज करने की बातें हैं, ताकि हम साधारणता से ना चले, लेकिन जो बाबा चाहता है और जो हम भी चाहते हैं अंदर से, कि हम वो उड़ती कला महसूस करें। हम ना हमारे पुराने संस्कार स्वभाव के दबाव में रहे, कंट्रोल में रहे, ना मोहवश हमारा कुछ कर्म हो, फिर कहेंगे सचमुच संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा, ये हमारा लक्ष्य है। बकरी चल के नहीं बनना है ब्राह्मण जीवन में, स्वतंत्र बनना है। ओके जी, जी जी, योग करना और योग कराने में अंतर क्या है, ये प्रश्न है। देखो इसमें कोई एक्चुअली वास्तव में अंतर नहीं है, क्योंकि योग योगी है और वो बाप की याद है, स्मृति, एक स्मृति बनाने की बात है। तो तो चाहे मैं वहां बैठी हूं चाहे यहां बैठी हूं वो काम तो मेरा है। लेकिन इसमें क्या है कि बाबा को कुछ कराना होता है तो वो आपको जरूर यूज करेगा। जैसे बाबा कभी कभी कहता है ना मुझे इसके तन में प्रवेश करके इसको ज्ञान देना है, तो कभी कभी किसी को साक्षात्कार कराना है, वो बाबा का काम है। लेकिन वो मेरे पुरुषार्थ से नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है, कई लोग कहते हैं मैं जब स्टेज में होती तभी योग लगता है। वो तो फ्री में आपको एक गिफ्ट मिल रही है क्योंकि बाबा को अपना काम कराना है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बस स्टेज ही चाहिए योग कराने के लिए। ये अंदर की दिल की लगन स्मृति की बात है कि जितना मैं यहां बैठ करके भी मैं गुम हो सकती हूं, यहां बैठ करके भी मैं गुम हो सकती हूं, ये मेरी मेहनत है। इन दोनों को सेपरेट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, सेवा का अभिमान बहुत आता है, स्टेज का अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि बाबा करण करावना रहे, बाबा अपना काम करेगा कैसे भी करके। वो तो समझो एक जैसे आप निमित्त बने हो, एक फ्री गिफ्ट मिली है आपको, लेकिन मेहनत पुरुषार्थ संस्कार बनाना वो हमारा काम है, और ये दोनों डिफरेंट है। इसलिए अपने आप को चेक करना होता है कई बातों में। मैं भी अपने आप को चेक करती हूं मुरली के समय, जितना मुझे नशा चढ़ता है मुरली पढ़ने में समय, मुझे इतना नशा होता है सुनने के समय, और उतना ही नशा होता है जब भी मैं क्लास में पढ़ती हूं, क्लास के सामने पढ़ती हूं। तीनों नशे समान है, ये थोड़ा फर्क पड़ता है। नहीं, मुझे मुरली कोई देवे पढ़ने के लिए तभी मेरा नशा चढ़े। You understand? ये एक सच्चा संबंध है अंदर। हमारा स्वमान इस स्टेज से नहीं मिलती है, हमारा एक आदि अनादि स्वमान है, अनादि में ही स्थिरता है। कोई चीज को स्थिर बनाना है अनादि में लेके जाओ, हद में नहीं। तो हम जितना आदि अनादि स्वरूप की महसूसता करेंगे और ही आत्मा की गहरी महसूसता करो, तो फिर हदों से पार, और वो जो अंदर का जो रस बैठेगा, अनादि स्वरूप का रस बैठेगा, वो इतना मन बुद्धि को स्थिर करेगा, कुछ भी हो जाएगा पांव हिलेगा नहीं, विश्वास अपने आप काम करेगा, निश्चय बुद्धि अपने आप काम करेगी। लेकिन रस बैठने की बात है। मुझे पता है, एक बारी लास्ट में स्टोरी बताती हूं, हमारी ऑक्सफोर्ड में मीटिंग हुई थी, आरसीज जो थे उनका कभी कभी साल में इत्तफाक से एक बारी मीटिंग होती थी, तो दादी जी बैठते थे। तो उस समय हम बैठे थे ट्रांसलेशन के लिए, तो दादी ने हरेक को प्रश्न पूछा कि आप सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठ करके अपनी कमजोरी को महसूस करो और दादी को बताओ संगठन में। तो एक एक करके 2 मिनट के लिए सभी साइलेंस में हम सभी बैठे, और फिर राउंड में दादी ने हरेक को पूछा। तो फिर मैंने ये महसूस किया कि दादी मुझे इतनी एक खामी तो नहीं दिखाई दी, लेकिन मुझे मैंने ये तो देखा कि मैं सूक्ष्म में मुझे अभी औरों की कमी कमजोरी नोट होती है सूक्ष्म में। चलो मैं इसका वर्णन नहीं करती हूं, क्रिटिसिज्म भी नहीं होता है, वो भी एक मोटा रूप है, लेकिन नोट तो होता है ना, बुद्धि में सूक्ष्म नोट तो होता है ना, स्मृति तो। तो मुझे इसको खत्म करना है, कैसे खत्म किया जाए। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहती है साइलेंस में होकर के और ही आत्मा की एनर्जी की गहराई में चले जाओ। मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि आंसर तो यही है, आत्मा की जब गहरी अनुभूति होती है, वो अनादि एनर्जी में बेहद की एनर्जी हो, तो हद का तो नाम निशान नहीं रहता है। वो उस डायरेक्शन में बुद्धि चलती ही नहीं है। तो अपनी बुद्धि को आप देखो, कौन से संकल्प चलते हैं बुद्धि में, हदों की बात की संकल्प क्यों चलती है? क्योंकि अभी अभी एक रस, आंतरिक आत्मा के अंदर जाने का रस बैठा नहीं है अभी तक। तो अभी अटेंशन शिफ्ट करो, संकल्पों पे नहीं जाओ और ही आत्मा की गहराई में चले जाओ। यही इसका सलूशन है, बेहद में जाने की पुरुषार्थ। फिर अपने आप वो आदत छूट जाती, वो संकल्प उठता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके जिसको रियली अंदर से वो एक दृढ़ संकल्प रहता है कि मुझे अपने मंजिल तक अवश्य पहुंचना है। आप देखो बाबा ड्रामा क्या कमाल करता है, आपके सामने ऐसा एक क्या कहेंगे सॉल्यूशंस, हेल्प मदद देगा और आपको अवश्य आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, दिल से संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प करना है। एक बारी वो हो गया ना तो सेटिंग हो गई समझो, फिर उसके बाद आप पे ही गाड़ी चलती है। ओके, ओम शांति। चलो बाबा की याद में बैठें।